al porcelana, al porcelana, al porcelana, al porcelana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ قمر رضوی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام ہم نے پروگرام آگاہی میں ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور آج اس کی 12ویں اور آخری قسط ہے اس سیریز کی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ان 11 قسطوں میں ہمیں مولانا نقی ہاشمی نے فلسطین کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ اور اس سرزمین میں کب کون کیسے آتا رہا اس کے بارے میں آگاہ کیا پھر ہم اس کو اس موجودہ جو جنگ ہوئی مقاومت تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان اس تک لے کے آئے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی رہبر معظم سید علی خامنائی کی جانب سے جو خط لکھا گیا مقاومت تنظیموں کو اور ان کو مبارکباد پیش کی گئی اس کے حوالے سے تو وہ اس خط کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے پیچھے پروگرام روک دیا تھا میں چاہوں گا کہ آغا صاحب السلام علیکم آغا صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کا کچھ حصہ تھا ہم نے چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا تو رہبر معظم کا خط تھا اس کو روک دیا تھا میں چاہوں گا اس کو سلسلے کو جاری رکھیں
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بات ہم نے یہاں تک کہی تھی کہ جو دیوانگی والا کردار ادا کیا ہے رہبر معظم نے یہ بات کہی ہے کہ الحمدللہ اس مقاومت کے پیچھے ریزسٹنس پاورز کے پیچھے اس جہاد کے پیچھے بہت ساری قومیں اور لوگ الحمدللہ آپ کی تائید میں آ گئے اس سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے بعد یہ تھا کہ جو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو دیوانگی اور ذلت پر مبنی کردار اپنایا اس نے پوری دنیا میں لوگوں کے ذہنوں کو اس غاصب ریاست کے خلاف کیا یہ اہم بات تھی یعنی میڈیا کنٹرول ہونے کی وجہ سے نا دنیا کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہودی بار بار نکلتا منہ سے یہودی ہے لیکن ہم نے کہا کہ جب بھی ہم یہودی مراد لے رہے ہیں تو وہ بنی اسرائیل اور زائنسٹ صیونی لے رہے ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو فلسطین میں آ گئے ہیں ہم زیادہ تر انہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ کیا کرتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں میڈیا کنٹرول ہونے کی وجہ سے دنیا کو پتہ نہیں چل پاتا اور ان کا بھی کوئی ایک صاف ستھرا سا چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ جو بربریت ہوتی ہے جو ظلم ہوتا ہے اور تھوڑا بہت جو سوشل میڈیا پہ بھی آزادی ملی ہوئی تھی ابھی ان کا کوئی چہرہ سامنے آیا ہے تو رہبر معظم نے اس طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ جو دیوانگی اور ذلت پر مبنی کردار اپنایا اس نے پوری دنیا میں لوگوں کے ذہنوں کے غاصب ریاست کے خلاف کیا ہے اور یہ مارکا اسرائیل کی پشت پناہ عرب حکومتوں یعنی آپ کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے یہ بالکل کھل کے بات ہونی چاہیے کہ اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے دیکھیں اگر عربوں میں منافقت نہ ہوتی اگر اردن ایک کیا ہے رول اس کا اس وقت اس کیا کردار ہے فلسطین کے مسئلے میں ملک ہے پورا تمہارے پاس مصر کیا کردار ہے تمہارا اس وقت اس پورے قضیے میں اسی طرح سے اور عرب دنیا کو آپ تلاش کریں جو دور والے بھی ہیں اس میں آپ سعودی عربیہ کو لیں آپ اس میں قطر کو لیں آپ اس میں کویت کو لیں آپ اس میں عرب امارات کو لیں آپ اس میں بحرین کو لیں حکومت بحرین کو لیں آپ اسی طرح سے عمان مسقط کو آپ لیں تو دیکھیں گے یا آپ چلے جائیں اوپر تیونس کو لیں الجزائر کو لیں سوڈان کو لیں مراکش کو لیں اگر حکومتی سطح پر دیکھیں عرب حکومتوں نے کچھ نہیں کیا کوئی سپورٹ نہیں ہے اگر آپ میں جرت ہوتی تو اسرائیل نہ صرف بنتا ہی نہیں ظلم تو چھوڑ دیجئے جو ہو رہا ہے ان پر اصلاً اسرائیل بن ہی نہیں سکتا تھا لیکن آپ کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیل بن گیا یعنی سوائے بشار اور کچھ لبنان عرب حکومتوں میں ان کے علاوہ اور کون ساتھ دے رہا ہے یعنی شام کے علاوہ اور لبنان کے علاوہ یہ الگ بات ہے کہ شام پر بھی ہمارے نادان دوست تنقید کرتے رہتے ہیں وہ بھی تو ڈکٹیٹر ہیں فلاں بھائی ڈکٹیٹر ہے لیکن آپ اس کو دیکھو کہ مفید کتنا رہا وہ ڈکٹیٹر یعنی وہ اسرائیل کی باتوں میں نہیں آیا اس نے سودا نہیں کیا اس نے خنجر نہیں گھونپا اس نے آپ کو اپنی زمین دی ہوئی ہے اس نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے مجاہدین کو اور یقینی طور پہ یہ زمین استعمال ہوتی رہی ہے حزب اللہ کی سپورٹ ہو رہی ہے ایران کی طرف سے فلسطینی سپورٹ ہو رہی ہے لبنان کی طرف سے ایران کی طرف سے یہ ساری زمین الحمدللہ استعمال ہوتی رہی ہے آج بھی جیسے میں نے شاید پچھلی دفعہ ہی کہا کہ 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد اس نے کہا آپ سرزمین کو استعمال کریں تو عرب حکومتوں کی پشت پناہی اور بالخصوص ظالم امریکہ کی نسبت لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت کا سبب بنے گا انشاءاللہ بنا ہے یہ جو سلسلہ رہا ہے
لہٰذا میں نے ایک نقشہ دیکھا تھا اس میں نقشے میں دکھایا تھا کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا اتنا سا ملک ہے اور اتنے سارے اسلام والے کے درمیان جو ہے نا وہ گھرا ہوا اور ان سب سے بدماشی کر رہا ہے
آپ سمجھیں آپ دیکھیں 1.5 کروڑ اور 200 کروڑ 1.5 करोड़ ये हैं और 200 करोड़ दुनिया का मुसलमान है, यानी 2 अरब मुसलमान है। क्या हो रहा है? क्या आपकी पावर है? आपकी मदनियात उसके कंट्रोल में, मीडिया उसके कंट्रोल में, गजा आपके उसके कंट्रोल में, पहले कह चुका हूँ एजुकेशन आपकी उसके कंट्रोल में, दुनिया की मईशत उसके कंट्रोल में, दुनिया की हुकूमतें उसके कंट्रोल में, आपके हाथ है क्या? आपके पास आपने हर चीज़ अपनी जो है वो उनको दे दी है। तो बार जुल्म को अगली बात रहबर मौज़ू फरमा दें, जुल्म को जारी रखना और जंगबंदी की दरख्वास्त दोनों ही दुश्मन की शिकस्त है। अगर वो जारी रखता तो भी मुसलसल शिकस्त हो रही थी उसको। जो हमने आपसे कहा है कि ना लोग अब एयरपोर्ट से भाग पा रहे हैं, ना अब लोग समंदर से भाग पा रहे हैं, अब लोग बंकर्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आदि हो गए। क्या इस कौम को जिनको आपने कहा था आओ जन्नत में चलें, उनकी हालत ये हो गई है? यानी यहूदी, यानी यही इसराइली। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहबर मौज़ू ने बहुत अच्छा नुक्ते की तरफ इशारा किया, कहा कि जुल्म को जारी रखना और जंगबंदी की दरख्वास्त ये भी तुमने दी है, जंग भी तुम्हारी ख्वाहिश से जारी रखा जाए, बिस्मिल्लाह जारी रखो। और फिर तुम पीछे से गए मिस्र की तरफ, तुम गए यूरोप की तरफ, भाई जंग बंद करवा दो। नतन्याहू बज़ाहिर कह रहे हैं कि जो हमें हासिल करना था हमने कर लिया है, जो उनका आखिरी जुमला आया अभी चंद दिनों पहले, लोगों से कह रहे हैं जो हमें हासिल करना था हमने कर लिया। तुमने क्या हासिल किया? तुम तो शिकस्त का शिकार हुए हो। भारत दोनों ही दुश्मन की शिकस्त है।
उन्होंने वैसे गलत नहीं कहा, जो हासिल उनको जिल्लत,
हाँ जिल्लत हासिल करनी थी, वो मजबूर हुआ कि शिकस्त को कबूल करे। ये खबीस रियासत इससे ज़्यादा कमज़ोर होगी। अब ये मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ शुरू हो गई रहबर मौज़ूम की। फ़लस्तीनी जवानों की आमादगी और जिहाद, जिहादी अकदार की कुदरत का इजहार, कुव्वत में मुस्तकिल इजाफा, फ़लस्तीन को रोज़ बरोज़ कुदरतमंदतर और गासिब दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर और बदहाल करेगा। यानी मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं। आपको हौसला मिला है, आप फ़लस्तीन के नौजवानों को हौसला मिला है, आपको पता चला दुनिया आपके साथ नहीं भी तब भी आप कितने ताकतवर हैं, अब इसमें इजाफा होगा। अब आप और हिम्मत और हौसले के साथ मैदान में कदम रखिए। इंशाल्लाह जितनी अभी आपकी तायद अल्लाह की तरफ से हुई इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए कदम बढ़ा दिया। हम आपसे ये कह रहे थे ना कि जो ईमान के मराहिल इन्होंने तय किए ना, इन तंसरुल्लाह यंसुरकुम, यानी ये बात, या खुदा अगर तुम एक कदम बढ़ाओ 100 कदम 10 कदम आगे आता है, ये बातें, या अल्लाह की राह में तुम अगर जिहाद करो, अगर तुम अल्लाह के लिए कदम उठाओ, यानी ये जितनी बातें थी ना, ये आप महसूस करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, खुदा को लम्स किया है ईमान के ज़रिए से, अपने अकीदे के ज़रिए से। अब ये उस मरहले में दाखिल हो गए हैं कि खुदा इनकी पुष्ट पर आ गया है। वही जो बात खुदा ने भी कही है ना, फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम, और लगता है कि फरिश्तों से मदद हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप जो है मुस्तकबिल और मजबूत होंगे, दुश्मन आपका कमज़ोर होगा। झड़पों का आगाज़ करना और आर्जी तौर पर रोकना फ़लस्तीन के जिहादी और सियासी ज़ोमा की तशख़ीस पर मबनी है। यानी अब इसराइल नहीं जो तशख़ीस देगा, था किसी वक्त वो एक बड़ी ताकत तशख़ीस देगा, अब नहीं। रहबर मौज़ू फरमाते हैं झड़पों का आगाज़ करना, यानी क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम तय करोगे कि हमने कौन सा इलाका अपना यहूदियों से वापस लेना है। झड़पों का आगाज़ करना इंशाअल्लाह। और इसी तरह से दूसरी बात फरमाई, आर्जी तौर पर रोकना फ़लस्तीन के जिहादी और सियासी ज़ोमा की तशख़ीस पर मबनी है। अब आपकी लीडरशिप तय करेगी मुजाहिदीन की, लेकिन तैयारी करना, मैदान में ताकतवर रहना, किसी तातुल का शिकार नहीं हो सकता। ये ना हो कि अब आप ही सोचें चलो जब जंग शुरू करनी होगी फिर देखा जाएगा तैयारी को, फिर जब हमें कुछ अपने इलाका खाली कराना होगा देखा जाएगा तैयारी को। रह पड़ेगा नहीं, ये जंग कब होती है, जंग छिड़ती कब है, फलां इसको छोड़ दीजिए। आप अपनी तैयारियां उसी तसलसल रखें जैसे आप जंग की हालत में, और आप जंग की हालत में हैं, यानी इसको यकीन उतारें इस बात को भी कि आप जंग की हालत में हैं। चाहे बज़ाहिर आपको अमनियत लग रही हो, बज़ाहिर आपका सीज़ फायर हो गया हो, बज़ाहिर जो है वो मुल्कों ने बीच में पड़ के जो है ना वो जंग को रुकवा दिया, लेकिन आप पता नहीं ना सोचिएगा कि जंग ख़त्म हो गई है। आप मुसलसल मैदान में रहें, मुसलसल ताकतवर बनते रहिएगा। गासिब रियासत और उसके मजदूर रिहाइशियों की बदमाशी के खिलाफ प्याम में शेख जर्राह, देखिए रहबर मौज़ूम ने, कि तुम चंद घराने थे, कुछ लोग कहते हैं 28 घराने, कहते हैं 32 घराने, इनके क़याम से आप देखें क्या नतीजा निकला है, कि इंतफादा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो कहा कि उनको भी, जो शेख जर्राह का तजुर्बा फ़लस्तीन के गैर मुसलमानों के लिए हमेशा दस्तूर अमल रहना चाहिए, यानी चंद दो घरानों ने जब स्टैंड लिया, पूरे फ़लस्तीनी स्टैंड पर मुत्तहिद हो गए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की गैबी इमदाद भी आ गई, और जो दुनिया के लोग आपका सपोर्ट करना चाहते थे वो भी खुल के आ गए। तो ये सब कब होता है कि जब कुछ लोग गैर तय कर लें कि भाई हमने जो ना स्टैंड लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख जर्राह के लोग अब तारीख में हमेशा के लिए लिख दिए गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। दुरूद हो रहबर मौज़ूम पर, बिल्कुल ऐसा ही है, दुरूद हो शेख जर्राह के जवान मर्दों पर। यह रहबर मौज़ूम अलग से नहीं, 2 मरतबा इनका जिक्र किया। फिर कहा कि इस्लामी दुनिया मुकम्मल तौर पर मसला फ़लस्तीन की नस्बत ज़िम्मेदार है, यानी आपके कंधे पर हर वक्त मसूलियत है। یوں نہیں کہ آپ کہیں کہ یار ہمارا فلسطین کے ہم سے کیا تعلق ہے, فلسطین تو بہت دور ہے, فلسطین کے لوگ تو خود صلح کر رہے ہیں, فلسطین میں تو یار اب تقریباً یونائٹڈ نیشن نے کچھ نہ کچھ, یہ غلط باتیں ہیں ساری. آپ ہمیشہ ہمیشہ مسئول اور ہمیشہ ہمیشہ ذمہ دار ہیں, آپ کے کندھے پر یہ رہے گی, آپ اس کو اتار نہیں سکتے. سیاسی عقل اور حکمرانی کے تجربے بھی اس شرعی حکم کی تائید اور اس پر تاکید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ تو ایک سیاسی نہیں ہے, یعنی تو ایک شرعی مسئلہ تھا کہ آپ پر ذمہ داری بنتی رہے گی, شرعی ذمہ داری, لیکن کہا کہ اگر آپ عقلی سیاست کا موجودہ عقل سے اعتبار سے سیاست کو بھی دیکھیں تو اس کا بھی تقاضا یہی بنتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر مسئولیت ذمہ داری ہے کہ اس ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا تجربہ ہے نا, آپ میں کہہ چکا تھا ٹیبل ٹاک کے اوپر آپ کبھی بھی میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سے کچھ نہیں رہ سکے, تو بھائی تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے, تمہارا سیاسی تجربہ جو ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تم انہی لوگوں کی سپورٹ کرو کہ جو مقاومتی تنظیمیں ہیں, اور اسرائیل انشاءاللہ اگر صفحہ ہستی سے مٹتا ہے جس کے پاس اب 19-20 سال ہی رہ گئے, آپ کو پتا ہے رہبر معظم کے فرمائش کے بقول, تو انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کہ پھر دنیا باہر اسرائیل کتنی خوبصورت ہو جانی ہے, کیونکہ اسرائیل گیا اس کا مطلب ہے امریکہ اور یہ سب بھی آہستہ آہستہ گئے انشاءاللہ, باہر اس طرح بڑھنا پڑے گا آپ کو. مسلمان حکومتیں ملت فلسطین کی حمایت میں سچائی کے ساتھ میدان میں آئیں, چاہے عسکری قوت بڑھانے میں, چاہے مالی مدد میں کہ جس کے آج ماضی سے زیادہ ضرورت ہے, چاہے عمارتوں گھروں کی دوبارہ تعمیر میں. کہتے ہیں ہم آنا ہے, آئیں نہیں ہے, آئیں. کن کو آنا ہے؟ اب آپ کو حکومتوں کو آنا ہے, یعنی اب بھی اپنی ویسے تو آپ کی عزت گئی, آپ کا آپ کی عوام کے درمیان میں اب کوئی حیثیت باقی بچی نہیں ہے, لیکن اگر اس حیثیت کو بچانا ہے تو اترے میدان میں. اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو دو تین رہبر نے ذمہ داریاں بتائی ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کی عسکری قوت بڑھائیے, ان کی فوجی امداد کیجیے, ان کی دفاعی طاقت کو مضبوط کیجیے, چاہے مالی مدد ہو جس کی آج سے ماضی میں زیادہ آج کل ماضی سے زیادہ ضرورت ہے, ان کی فوجی مدد, ان کی مالی سپورٹ کیجیے ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے, چاہے عمارتوں اور گھروں کی دوبارہ تعمیر کرنے میں. غزہ آدھے سے زیادہ تباہ ہوا ہے, ابھی بھی آدھے سے زیادہ غزہ تباہ ہوا ہے, ہزار خاندان جو ہے نا وہ ہاں اپنے گھروں سے محروم ہوئے ہیں, تو یہ تعمیرات میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. مسلمان دنیا آئے اور آگے غزہ کو دوبارہ سے بنائے.
تعمیرات میں تو شاید کردار ادا کر دیں, لیکن وہ ان کی فوجی اور عسکری قوت بڑھانے میں نہیں کریں گے.
ہاں خوف زدہ ہیں, لیکن چلیں رہبر معظم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا. اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا نا کہ آپ دعوت تو دینا قوموں کو, حکومتوں کو دعوت دی جا رہی ہے. ملتوں کا احتجاج اور اس پر ظلم اس دینی اور سیاسی مطالبے کا پشت پناہ ہے. مسلمان ملتیں اس ذمہ داری کا مطالبہ اپنی حکومتوں سے کریں, خود عوام بھی اپنی حیثیت کے مطابق مالی اور سیاسی مدد کرنے کی ذمہ دار ہے. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے, ہمیں پتہ حکومتیں نہیں اٹھیں گی جب تک وہاں کی عوام ان سے مطالبہ نہیں کرے گی, تو عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارے یہ جو باتیں ہیں, اور اگر یہ صحیح ہیں, کہا کہ اس کو شرعاً, اس کو اخلاقاً اور اس کو عقلاً ہر اعتبار سے صحیح ہے کہ آپ کو ان کو طاقتور بنانا چاہیے, ان کی تعمیرات اور ترقی میں آپ کو گورنمنٹ اس کو کودنا چاہیے. اگر حکومتیں نہیں کودتی, عوام سے کہا کہ اپنی حکومتیں مجبور کریں, فرض کریں حکومتیں نہیں آتی ہیں تو پھر کہا کہ عوام آپ کا بھی ہے, یعنی آپ بھی پھر اپنے طور پر نہیں, آپ کی حکومت آپ کا ساتھ دے رہی ہے, لیکن آپ کو اپنے طور پر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کے لیے, یعنی کھڑے ہوں اور امداد جمع کریں اور ان کو پہنچائیں اور ان کے ملک کو بنائیں, یعنی آپ کو یہ کام خود عوام کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک اور اہم ذمہ داری اس دہشت گرد اور صفاق صہیونی حکومت کے مظالم پر سزا کا مطالبہ ہے, یہ عوامی سزا کا مطالبہ اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم نے ریلیاں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم بینرز لگا رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں بھائی اتنے گھر گرا دیے, اتنے لوگ شہید کر دیے, اتنے مجروح ہیں, زخمی ہیں, اور اتنا جو ہے وہ بہرحال ملک پیچھے چلا جاتا ہے جب یونیورسٹیز ختم ہو جائیں, جب اسکول ختم ہو جائیں, جب یہ جنگ کی حالت, اور پھر نفسیاتی اثرات الگ جو بچوں پر پڑتے ہیں, جو خواتین پر پڑتے ہیں, جس سے ذہنی, تو یہ مطالبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس وحشی جانور کو جو نتنیاہو کی صورت میں ہے اور یہ وحشی ملک جو بھیڑی کی صورت میں ہے, آیا ان کی سزا کا مطالبہ عالمی عدالتوں میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر بیدار ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ ان 12 دنوں میں جس طرح فلسطینی بچوں اور عورتوں کو قتل کیا گیا, رحمت نے بھی اشارہ کیا, یہ بغیر سزا کے نہیں رہنا چاہیے. غاصب ریاست کے سارے ذمہ دار اور ظالم نتنیاہو کے خلاف عالمی عدالتوں میں کاروائی ہونی چاہیے,
جنگ جرائم کی بنیاد
بالکل, اور انہیں سزا سنانی چاہیے, اور یہ کام اللہ کی قدرت سے انجام پائے گا. واللہ غالب علی امرہ. رحمت نے یہاں پر بات کو ختم کیا کہ یہ مطالبہ عوام کا بنتا ہے. خوب دو تین باتیں مستقبل کے ماضی میں کر لیتے ہیں, کیونکہ پھر ٹائم جو ہے ہمارا
جا رہا ہے کہ ہم جو نا وہ
تھوڑا مستقبل کو دیکھیں,
مستقبل کریں مستقبل کہاں پر,
تاکہ کیونکہ آج یہ ہمارا آخری پروگرام ہے اس سیریز کا, تو ہم اس مستقبل کو دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک دو منٹ تو لانی بھی ہو جائے. देखिए जो मेरी समझ में आया वो ये कि जैसे मैंने इस पूरे 11-12 दिनों में तस्करा किया कि यानी चंद चीज़ें आपको बहुत वाज़े तौर पे गुज़श्ता जंगों से ज़्यादा, मसलन पहले ये पत्थरों की लड़ाइयाँ, पहले छुरियों की लड़ाइयाँ, जो बेचारे हमास और जो बेचारे जिहाद इस्लामी और इसी तरह से जो वेस्ट बैंक के लोग थे, कुछ नहीं था उनके पास। अब खुदा का शुक्र है आप ड्रोन और मिज़ाइल्स पर आ गए। ये जो आपकी हुई है ना, इस ताकत यानी ये ताकत आपकी जो बढ़ी है इसको रुकना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना होगा अभी गज़ा के नाम का ड्रोन जो है ना ईरान ने वो मुतारफ करवा दिया।
जी 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 बिल्कुल।
और वो नाम उसका गज़ा रख दिया है और वो इंशाल्लाह है भी गज़ा के लोगों के लिए, ठीक है जी। ये जिस तरह से ईरान आगे आ रहा है यानी इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से जो हुकूमतें, सियासी तंजीमें और इंशाल्लाह रेजिस्टेंस पावर्स और इसी तरह से जो भी अपने तौर पे मीडिया, मीडिया जंग, हमें जो है ना वो यानी फ़लस्तीनियों को एम्पावर करना है हर एतबार से। उनको ये एहसास, उनको लेटर लिखे जाएँ, उनको ईमेल्स किए जाएँ, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स बना बना के फेसबुक के ज़रिए से उनको पैगाम दिए जाएँ कि भाई दुनिया का नौजवान आपके साथ है, दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हैं, हम आपको और ज़्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं। देखिए जिहाद जो है ना कहीं पर भी हो रहा हो, कश्मीर में उठे, यमन में उठे, शाम में उठे, लेबनान में उठे, जब तक मुकामी आदमी अपने पैरों पे खड़े होकर जिम्मेदारी नहीं उठाता ना, बाहर से सपोर्ट नहीं आती है। नहीं कश्मीर के अंदर भी ईरान वैसी सपोर्ट करे जैसे गज़ा में कर रहा है, अरे भाई वो उस वक्त करेगा जब वहाँ के मुकामी लोग ये तय कर लें कि हमें चाहे कोई इस दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई ताकत हमारी मदद करे ना करे, हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। जब कौमी ये तय करती हैं ना फिर मदद आती है, इमदाद फिर आती है। धक्का स्टार्ट या आपको पीछे से सहारा देके खड़ा कर दिया जाए, कब तक खड़े रहेंगे आप?
भाई फलस्तीन मदद खुद अपनी मदद आपके तहत खड़े ना होते तो ईरान को
कौन सपोर्ट करता? न लेबनानी आते, लेबनानी अगर खुद खड़े ना होते कौन सपोर्ट करता? यमनी अगर खड़े ना, इसी तरह इराक, शाम, शाम के लोग इराक ना खड़े होते तो कौन आता? हश्द शाबी बनी है तो पीछे अल्लाह की मदद आती है ना। तो बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीनियों को बहुत हौसले में, मैंने आपसे कहा पत्थर से एक सफ़र तय किया उन्होंने मिज़ाइल तक का, और वो इंशाल्लाह समझ गए कि मिज़ाइल के बाद अब कहाँ जाना है, और वो उफ़ुक़ है जो नज़र आ रहा है इनको भी और दुश्मन को भी, उसने भी समझ लिया कि इतने मुहासरे के बाद अगर यहाँ पहुँच गए हैं, आया इन्होंने अपनी पूरी ताकत का इजहार किया नहीं किया। हम यकीन रखते हैं कि फ़लस्तीनी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्होंने अपने सारे कार्ड्स खोल दिए, उन्होंने अपनी सारी ताकत ला के सामने रख दी हो, नहीं है वो। उन्होंने अभी तक तो जितनी ज़रूरत थी उतना काम किया और वो इससे ज़्यादा पावरफुल हैं इंशाल्लाह। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, रहबर कह रहे हैं हुकूमतों से मुतालबा करो, नहीं माना। अवामी एनजीओज़ का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ऐसे रज़ाकार बनाए जाएँ, मुख्तलिफ ग्रोह बनाए जाएँ कि जो बाकायदा ये तय करें यार दूर से बैठ के क्या कर सकते हैं हम फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए। आया वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर हर शोबे के लोग होंगे, उनको ट्रेनिंग्स देना, उनको तरबियत देना, ये तो आपको मुश्किल काम नहीं है ना। यानी उनको बाकायदा मुखातिब करार दिया जाए और वो जो दिफाई काम कर सकते हैं वो भी करना चाहिए और इसमें घबराना चाहिए। आपको पाकिस्तानी हुकूमत आपको खुल के कह तो नहीं हमें साथ देना है गज़ा के मुसलमानों का, बिस्मिल्लाह। तो फिर हम यही कहेंगे भाई जो हम कर रहे हैं कानूनी काम होना चाहिए, कानूनी सतह पर हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम वहाँ के नौजवानों को एम्पावर करें मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर उनके। इसी तरह से इमदाद, चंदा जमा करना, ये हमें ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू करना चाहिए, यानी हुकूमती इदारों से लेकर फौज, आर्मी, सब मिल के उनके लिए इमदाद जमा करनी चाहिए कि जो भी, चलो अगर आप घबराते हो गए यार ये असलाह ना ख़रीद लें तो भाई ठीक है, पाबंदी लगाते हैं कि घर बनाने के लिए, उनके रोड बनाने के लिए, उनके डैम्स बनाने के लिए, उनको यानी जो खस्तगी, जो खस्ता हाल हो गए, जो टूट फूट गए, हम इसको मजबूत करने के लिए एक दोबारा से इस्लामी दुनिया से पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं इसका,
गज़ा को रिबिल्ड किया जाए,
गज़ा को, पूरे फ़लस्तीन को, यानी जो रबता ऐसा रखा जाए कि हमें डिमांड्स का पता चलता चला जाए, हमें पता हो गज़ा में आज किस चीज़ की ज़रूरत है, कल किस चीज़ की ज़रूरत है, परसों किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी यही वो एक बड़ा ज़रिया है कि हम अपनी आवाम को भी मोबालाइज़ कर सकते हैं इस बड़े प्रोग्राम के लिए। अब हम गज़ा के लिए कैंप लगाएं, गज़ा के लिए रोडों पर आके बैठें, यानी फ़लस्तीन के लिए, और जमा करें इमदाद को। वो वाली इमदाद नहीं कि जो अमूमन होता है कि लोग अपने घर के पुराने कपड़े ला के दे रहे हो तो लोग अपने घर की इजाफी चीज़ें ला के दे रहे हैं, नहीं वो नहीं भाई। आएँ, एक बहुत बड़ा मसला है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और इसराइल की नाबूदी, ये दरीना ख्वाब है तमाम मुसलमानों का, चाहे आपको शौरी पता हो या ना पता हो कि ये सबसे बड़ा, यही पाकिस्तान की बदहाली का सबसे बड़ा सबब है। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा यानी इतनी पावर्स हैं पाकिस्तान के पास, मादनियात की सूरत में देखें, इन्वायरमेंट की सूरत में देखें, ज़री ज़मीन की सूरत में देखें, आप पानी की सूरत में देखें, आप पहाड़ों की सूरत में देखें, आप अफरादी क़ुव्वत की सूरत, यानी जिस चीज़ को आप उठाएँ, लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे और अभी तक हाथ हमारा फैला हुआ है, इसमें बहुत बड़ा किरदार है IMF का, एक बहुत बड़ा किरदार है वर्ल्ड बैंक का। ये वो है जिसके पीछे यहूदी है जो आपको सरमाया सूद पर देता है, सूद का कारोबार यही लोग करते हैं, ये सारे बैंक जो सूद के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी एजुकेशन से लेकर हमारी दवाइयों तक, मैंने बताया हेल्थ पर इनका कब्जा है। अब वो जो कह देते हैं WHO आप कबूल कर लेते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ पर आपको ये दवा खानी है, कोरोना जो है उसके एहतियात का तरीकाकार ये है, आपके रिसर्च नहीं होती इन बातों पर कि ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जो दवा जिस तशखीस देके वो आपको खिला देते हैं आप वो खा लेते हैं, पढ़ाई में जो कहते हैं हम पढ़ लेते हैं, तो साथ जैसा वो हमारा चाहते हैं बना देते हैं, एजुकेशन के अंदर जिन शोबों का वो इजाफा कर देते हैं हम समझते हैं यही चीज़ें वाजिब में पढ़ना, हमें पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी भी था नहीं था जिसके ऊपर आप इतना जोर लगा रहे हैं। पता चला सब कुछ जो आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हो, वो MBBS करवा रहे हो, वो हमें IT के चैंपियंस बनवा रहे हो, क्यों बना रहे हैं पता चला कि अपनी मल्टी नेशनल कंपनीज चलाने के लिए, ना कि इस मुल्क को चलाने के लिए। हमें यही बात नहीं पता कि इस मुल्क के लिए मुफीद चीज़ क्या है, क्यों, क्योंकि ये सारा उनके कंट्रोल में।
मतलब ये इससे जिंदा बात कर गई है, लेकिन आप इसी बात पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास बस इत्तला ये थी कि जो नया जो एक पूरा निसाब बना रहे हैं उस हिसाब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन लोगों ने शामिल किए हैं और यहाँ पर आ रही हैं और वो इतने बड़े निसाब में आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का
यानी एक अलग से किसी वक्त जो ना
जी जी ये
मुतालबा करता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आपके हाथ से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं, इख्तदार आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। देखिए ये सब चीज़ें ब्रेन बनाती हैं ना, अब जिस जो अगर ये सॉफ्टवेयर्स कहलाता है इंसानी दिमाग, यानी मुराद ये कि यहाँ पर अगर बच्चों के सॉफ्टवेयर्स इन्होंने ख़राब कर दिए, आइंदा की नस्ल के सॉफ्टवेयर्स ख़राब कर दिए, तो फिर ये जो कुछ हो रहा है मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, ये कहाँ से आया मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी? आपको पता या जोकर्स इराक़ के अंदर मुजाहरे कर रहे थे, लेबनान की वहाँ पर शिया सुन्नी लड़वाने के लिए जो होते हैं मुजाहरे, आप पता चले कि सारा ब्रेन कहाँ से बन के आ रहा है, यही अमरीका यही इसराइल इसी तरह से मुल्क के अंदर भी
उन्होंने हिसाब के जरिए पढ़ाया है वो।
तो ये वो सारे मौजू हैं कि जिनको इंशाल्लाह यानी ज़रूरत है कि इन्हें पहले मरल में बात कहाँ से कर रहे थे कि गज़ा को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनके नौजवानों से डायरेक्टली रब्ता होना चाहिए, उनके लिए इमदाद जमा होनी चाहिए, और अब आप मुतमिन हो जाइए कि उनका जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही ताबनाक है, रहबर मौजू ने फरमाई दिया, और जैसा नज़र आ रहा है कि बाहर वाले मुतवज्जो हो गए हैं, वो फ़लस्तीनी के जो बेचारे यानी मायूसी के शिकार हो गए थे उनमें दोबारा से हौसला और उम्मीद आई। आप फ़लस्तीनियों से गज़ा में नहीं मिल सकते, लेकिन आप फ़लस्तीनियों से शाम में भी नहीं मिल सकते, आप फ़लस्तीनियों से जाके लेबनान में भी नहीं मिल सकते, आप उर्दुन में मिस्र के अंदर इराक़ के अंदर पता नहीं कहाँ का फ़लस्तीनी मौजूद है, जाएँ और जाके उनको एहसास दिलाएँ कि भाई बिस्मिल्लाह दोबारा से ये मुल्क हासिल करने का बेहतरीन वक्त है, वो ऐसा ना मायूस हो जाओ, वो चाबियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे घर की तुम्हारे पास चाबियाँ थी, यानी उनको हौसला देने की, उनसे रब्ता करने की, उनके ग्रुप बनाने की, उनको एम्पावर करने की, आप डायरेक्ट इमदाद नहीं पहुँचा सकते, आप इन तक इमदाद पहुँचाइए, इनके जरिए गलत तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यानी इस तरह से देखें, और इसी तरह से जो एक और बड़ा काम है वो ये है कि हम ये देखें कि ये जो पावर्स हैं यानी लेबनान के अंदर पावर बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है खुदा का शुक्र है, यानी इस तरह से कोई और मुल्क, इस तरह से कोई और ताकत, यानी हम पाकिस्तान की हुकूमत को बाकायदा मुतवज्जह करें कि भाई हमारा रोल जो है ना वो सिर्फ ज़बानी नहीं है, हम जो है वो मीडिया के अंदर बातें कर रहे हैं, हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बयानात के हद तक रहते हैं, हमें जो है वो एक माहौल बनाना चाहिए किस तरीके से हमें सपोर्ट करनी है, अमलन सपोर्ट करनी है। तो इस पर और रेजिडेंस पावर यानी जो कहा जा रहा है कि ये भी एक अलहमदिल्ला यूनाइटेड जिसको आप कहते हैं स्टेट्स बनती चली जा रही ना, यानी ये जैसे जैसे मुजाहमती तंजीमें एम्पावर हो रही हैं, रेजिडेंस पावर्स जैसे जैसे ताकत में आ रही हैं, इनकी एक ना नज़र आने वाली हुकूमत है जो दुनिया में बनती चली जा रही है, जिसमें यमन शामिल है, शाम शामिल है, लेबनान शामिल है, अलहमदिल्ला पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, जो अब नफरत करते हैं इराक़ शामिल है, ईरान शामिल है, ये वो लोग हैं जब अमेरिका से नफरत करते हैं, ये वो लोग जिन्होंने समझ लिया कि अमेरिका ही ने तो इराक़ ख़राब किया, इराक़ को किसने तबाह किया, अफगानिस्तान को किसने तबाह किया, पाकिस्तान को कौन तबाह कर रहा है, यमन को किसने तबाह किया है, शाम को किसने तबाह किया है। तो ये जो अलहमदिल्ला एक अभी तक अवामी पावर्स है ना, अभी तक अवामी ताकत है जो ग्रोह बने हुए, अब इसमें ऐसे ऐसे मुल्क आ रहे हैं यानी जैसे शाम मुल्क आया है, जैसे इराक मुल्क आया है, जैसे यमन इंशाल्लाह मुल्क के तौर पर आएगा, जैसे ईरान आया है, ऐसे ही अब पाकिस्तान, यानी ये मुतालबा तो इस तरह के होने चाहिए, ऐसे हम तो भी यही कर सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान के अंदर इस मौजू को संजीदगी के साथ अलहमदिल्ला हुकूमत मुतालबा ज़बान के तक कर रही है और अच्छी बातें की है जो कोशिश की है हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, लेकिन हमें इनको बताना चाहिए कि ये सिर्फ इस हद तक रुकना नहीं है, बल्कि हम जो कुछ कर सकते हैं इसराइल को पीछे रखने के पीछे करने के लिए अमली इकदाम वो करने चाहिए, और जो कुछ मजबूत करने के लिए कर सकते हैं हमास को वो भी करने चाहिए। यानी इस तरह की अभी दो तीन बातें मेरे दिमाग में थी जो मैंने जल्दी जल्दी कर दी, लेकिन बाद में फिर और ज़रा मुफस्सल इंशाल्लाह कि किस तरह से फ़लस्तीनी अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं और देखना चाहिए और हम उनके साथ क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह फिर एक और कभी किसी वक्त प्रोग्राम जो है वो तफसील के साथ करेंगे।
सर बहुत शुक्रिया आपका पूरी सीरीज़ के लिए वक्त देने का, आपने जो है ना गुफ्तगू बहुत खूबसूरत की हमारे फीडबैक से पता चल रहा है कि लोगों ने बहुत पसंद फरमाई, लेकिन हम इसके साथ साथ आपसे गुजारिश ये करेंगे कि जब भी कोई इशू हो तो उस पर जो है ना वो एक मतलब आपसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी गुजारिश पर वक्त निकालिएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम आगाही के मसले फ़लस्तीन पर होने वाली है सीरीज़ आज अपने अख्ताम को पहुँची। हम एक दफ़ा फिर मौलाना नकी हाशमी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये पूरी सीरीज़ करने में और हमें मसला फ़लस्तीन समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त दिया अपना, और यहाँ पाबंदी से तशरीफ़ लाते रहे स्टूडियो में हमारे। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम आगही और का सिलसिला जारी है, और हम ऑन एंड ऑफ मौलाना नकी हाशमी को भी इस प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान कंबर इसबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।